बाहर से अचानक आवाज आई, बहू, श्यामली बहू। आवाज गलियारे से आती हुई साफ और बुलाती हुई थी। श्यामली का शरीर जैसे उसी पल झटका खा गया। उसने झट से आंखें खोली, दिल की धड़कन अब भी बेकाबू थी, लेकिन उस आवाज ने उसे हकीकत में वापस खींच लिया। उसने एक पल भी कुछ नहीं कहा, न सफाई, न नजर, न कोई जवाब, बस अचानक खुद को विश्वनाथ की पकड़ से छुड़ाया। इस बार उसने जोर लगाया और इस बार विश्वनाथ ने उसे नहीं रोका। उसके बाहों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। श्यामली लगभग पीछे हटती हुई एक कदम में उससे दूर हो गई। उसकी सांस अब भी तेज थी, आंखें झुकी हुई। उसने पल्लू ठीक किया, हाथ कांप रहे थे। मैं अभी आती हूं, जैसा कुछ कहने का मन हुआ, लेकिन शब्द होंठों तक आए ही नहीं। वो बस पलटी और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होने की आवाज भी नहीं आई, बस उसके जाने का एहसास रह गया। कमरे में विश्वनाथ अकेला रह गया। वो वहीं खड़ा था, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसने एक गहरी सांस ली, हाथ अपने आप मुट्ठी में भींच गए। छाती में अजीब सी जलन थी, गुस्से की नहीं, बेचैनी की। ये क्या था, उसने खुद से कहा, लेकिन जवाब कमरे की खामोशी में कहीं खो गया। उसकी नजर अनायास दरवाजे पर टिक गई, उसी रास्ते पर जहां से श्यामली गई थी। कुछ देर तक वो वहीं खड़ा रहा, फिर अचानक बिना कुछ सोचे वो भी बाहर निकल पड़ा। श्यामली तेज कदमों से ऊपर की ओर जा रही थी। सीढ़ियों पर उसके पांव हल्के पड़ रहे थे, लेकिन दिल पर बोझ भारी था। रत्ना देवी का कमरा, वही एक जगह थी जहां वो इस वक्त खुद को समेट सकती थी। दरवाजे के बाहर रुककर उसने एक पल सांस संभाली, हथेली छाती पर रखी, धड़कन को काबू में करने की नाकाम कोशिश, फिर हल्की सी दस्तक दी। आ जा बहू, अंदर से रत्ना देवी की आवाज आई। श्यामली ने दरवाजा खोला। कमरे में दिया जल रहा था, हल्की पीली रोशनी, सुकून देने वाली। रत्ना देवी बेड पर बैठी थी, पीठ के पीछे तकिया लगाए। सासुमा, आपने बुलाया, श्यामली ने सिर झुकाकर पूछा। रत्ना देवी ने उसे देखा, उसके चेहरे की हल्की घबराहट, आंखों की नमी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ बहू, मेरी कमर में आज बड़ा दर्द है, जरा दवा लगा दे। जी, श्यामली ने तुरंत पास रखी दवा की शीशी उठाई। वो रत्ना देवी के पीछे आकर बैठ गई, पल्लू ठीक किया, उंगलियों में दवा ली, लेकिन जैसे ही उसने दवा लगानी शुरू की, उसका मन वापस उसी कमरे में चला गया। विश्वनाथ की सांस, उसकी आवाज, वो अचानक छू जाना, उसकी उंगलियों में हल्की सी कंपकंपी आ गई। दवा लगाते हुए भी उसका ध्यान बट रहा था। बहू, रत्ना देवी ने हल्के से कहा। जी सासुमा, श्यामली चौंक गई। हाथ कांप क्यों रहे हैं, आवाज में सवाल था लेकिन सख्ती नहीं। श्यामली ने तुरंत खुद को संभाला। नहीं, वो शायद थकान है, रत्ना देवी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप लेटी रही। कमरे में फिर वही सुकून भरी खामोशी लौट आई, लेकिन श्यामली के भीतर अब भी सब कुछ हिल रहा था। तभी दरवाजा खुला, श्यामली ने बिना पीछे देखे भी पहचान लिया, वो कदम, वो मौजूदगी, विश्वनाथ। माँ, उसकी आवाज आई। श्यामली का दिल जैसे एक पल को रुक गया। रत्ना देवी ने गर्दन घुमाकर देखा। अरे बेटा, आ गया, आप दवा लगवा रही हैं, विश्वनाथ पास आ गया। हाँ बेटा, रत्ना देवी बोली, सुबह से कमर में दर्द है, बहू लगा रही है। विश्वनाथ की नजर अनजाने में श्यामली पर चली गई, वही श्यामली जो कुछ देर पहले उसकी बाहों में थी। श्यामली ने भी सिर उठाया और दोनों की नजरें टकरा गईं। बस एक पल के लिए, लेकिन उस एक पल में बहुत कुछ था, झिझक, अधूरा सवाल और वो अनकहा एहसास जो दोनों ने अभी अभी जिया था। श्यामली ने तुरंत नजर झुका ली, उसकी उंगलियां फिर से दवा में लग गई, इस बार जरा तेज, जैसे वो खुद को व्यस्त दिखाना चाहती हो। विश्वनाथ ने भी नजर हटा ली। माँ, आप लेटिए, मैं हूं यहीं, उसने कहा। अरे नहीं बेटा, रत्ना देवी मुस्कुराई, बहू है ना, तू जा अपना काम देख। विश्वनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं खड़ा रहा। कमरे में तीन लोग थे, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो सिर्फ दो को महसूस हो रहा था। श्यामली ने दवा लगाना पूरा किया, शीशी बंद की। हो गया सासूमा, उसने धीरे से कहा। ठीक है बहू, रत्ना देवी ने उसका हाथ थामा, तू भी थोड़ा आराम कर लेना। जी, श्यामली उठी, बिना विश्वनाथ की ओर देखे वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। विश्वनाथ ने भी कुछ नहीं कहा, बस उसकी पीठ को जाते हुए देखता रहा, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा। दरवाजा बंद होने के कुछ पल बाद रत्ना देवी ने हल्की सी खांसी ली। बहू, फिर याद आया कि श्यामली तो बाहर जा चुकी है, उन्होंने आवाज ऊंची की। श्यामली, दरवाजे के बाहर से श्यामली रुक गई। जी सासुमा, तुझे शकुंतला ढूंढ रही थी, रत्ना देवी ने कहा, उसके पास भी चली जाना, सुबह से कुछ परेशान लग रही थी। अच्छा सासुमा,
श्यामली ने धीरे से कहा। वो पलटी, सीढ़ियों की ओर बढ़ने से पहले एक पल को रुकी। कमरे के भीतर विश्वनाथ वहीं बैठा था। उसकी नजर अनजाने में उसी पर टिक गई। श्यामली ने भी एक बार उसकी ओर देखा, बस एक झलक, न सवाल न शिकायत न कोई शब्द। विश्वनाथ के होंठ हिले, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। उसने बस नजर झुका ली। श्यामली चली गई। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और फिर खामोशी। विश्वनाथ ने गहरी सांस ली और रत्ना देवी के पास आकर बैठ गए। दोनों के बीच कुछ पल तक कोई बात नहीं हुई। फिर रत्ना देवी ने बिना उसकी ओर देखे कहा, बेटा यही सही वक्त है तेरे पिता बन जाने का। विश्वनाथ चौंक गया। माँ? उसने उनकी ओर देखा। रत्ना देवी अब उसकी तरफ मुड़ी। मैं यूं ही नहीं कह रही हूं। विश्वनाथ ने माथे पर हाथ फेर लिया। माँ, आर्यन इतना बड़ा हो चुका है। उसकी आवाज में उलझन थी। ऐसे में उसका भाई या बहन अगर आ जाता है तो वो क्या सोचेगा। वो थोड़ी देर रुका फिर बोला, और फिर आर्यन इस खानदान का वारिस है, सब कुछ उसी का है, फिर जरूरत क्या है। रत्ना देवी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर बहुत शांत स्वर में बोली, आर्यन और तुम्हें जरूरत नहीं है बेटा। विश्वनाथ ने उनकी तरफ देखा। लेकिन, रत्ना देवी ने वाक्य पूरा किया, लेकिन श्यामली को तो होगी। उनकी आवाज में कोई ताना नहीं था, बस एक सच्चाई थी। विश्वनाथ कुछ नहीं बोला। उसकी नजर अपने आप दरवाजे की ओर चली गई, उसी रास्ते पर जहां से श्यामली कुछ देर पहले गई थी। रत्ना देवी ने उसकी चुप्पी देखी और समझ गई। कमरे में फिर सन्नाटा भर गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा कई सवालों से भरा हुआ था।